एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
एकत्र ज्ञान गोष्ठी के एक और सत्र में मैं आपका मेजबान आप सभी का स्वागत करता हूँ।
आज हमारे साथ है मेरी सहयोगी होस्ट।
नमस्कार।
और मुझे वाकई खुशी है कि आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब कहीं ना कहीं जुड़ी गया है।
बिल्कुल। आज हम बात करने वाले हैं मशीन ट्रांसलेशन की, यानी कंप्यूटर कैसे भाषाओं का अनुवाद करते हैं।
और इस चर्चा के लिए हमारे पास है थियरी पोएब्यू की किताब, जिसका नाम ही है मशीन ट्रांसलेशन।
हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प विषय है। हम सब ने कभी ना कभी गूगल ट्रांसलेट या कोई और ऐसी ही सेवा इस्तेमाल की ही होगी, शायद विदेश यात्रा पर या कोई ईमेल समझने के लिए, या हो सकता है बस ऐसे ही कुछ देखने के लिए।
सही कहा।
तो ये जानना कि पर्दे के पीछे ये सब होता कैसे है, मतलब क्या है ये तकनीक, ये वाकई में काफी रोचक है। और ये सिर्फ एक सुविधा की बात नहीं रही अब।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अब ग्लोबल कम्युनिकेशन, व्यापार, जानकारी तक पहुंच, इन सब के लिए अहम जरिया बन चुका है। पर ये जादू असल में है क्या, कैसे काम करता है, इसकी असली ताकत क्या है, और कहां ये अभी भी आप कह सकते हैं इंसानी समझ से थोड़ा पीछे है।
हाँ, इन्हीं सब गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे आज। तो फिर शुरुआत करते हैं लेखक से ही, थियरी पोएव्यू के बारे में कुछ जानते हैं।
हाँ, ये जरूरी है ये जानना कि कौन हमें ये कहानी सुना रहा है। तो थियरी पोएव्यू कोई ऐसी एकेडमिक नहीं है, वो फ्रांस के बहुत ही प्रतिष्ठित CNRS यानी राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में रिसर्च डायरेक्टर हैं, और पेरिस के मशहूर एकॉल नॉर्मल सुपीरियर से भी जुड़े हैं। मतलब ये दुनिया के टॉप रिसर्च संस्थानों में गिने जाते हैं।
अच्छा, और उनका खास काम?
वो पिछले 20 साल से भी ज्यादा समय से कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे NLP कहते हैं, उस पर काम कर रहे हैं।
अच्छा, आसान भाषा में मतलब?
आसान भाषा में कहें तो वो इस बात की एक्सपर्ट हैं कि कंप्यूटर भाषाओं को कैसे समझें और कैसे इस्तेमाल करें। और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने सिर्फ थ्योरी पर काम नहीं किया, बल्कि वो खुद मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम बनाने की प्रक्रिया में शामिल रही हैं। प्रैक्टिकल अनुभव है उन्हें।
ओहो, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब थियरी और प्रैक्टिकल दोनों का अनुभव।
बिल्कुल, और यही बात उनके नज़रिए को खास बनाती है। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का पूरा सफ़र देखा है, मतलब शुरू के वो 50 के दशक वाले नियम आधारित तरीकों से लेकर फिर 90 के दशक की सांख्यिकीय क्रांति और अब आज का जो न्यूरल नेटवर्क का दौर है, सब कुछ।
तो जाहिर है उनके पास एक बहुत गहरा और व्यापक दृष्टिकोण होगा।
हाँ, और उनकी खुद की जो मल्टीलिंगुअल पृष्ठभूमि है, वो भी उन्हें भाषाओं के बीच की जो बारीकियां होती हैं, जो चुनौतियां होती हैं, उन्हें समझने में मदद करती है।
तो अब जब हम लेखक की विशेषज्ञता को समझ गए हैं, तो चलिए किताब के अंदर झांकते हैं। ये किताब आखिर क्या करने की कोशिश कर रही है, इसका मकसद क्या है?
देखिए, ये किताब एक तरह से मशीन ट्रांसलेशन की जो जटिल सी दुनिया है ना, उसे आसान बनाने की कोशिश है। ये समझाती है कि कंप्यूटर, जो असल में जीरो और एक की भाषा, मतलब गणित और लॉजिक पर चलते हैं, वो इंसानी भाषा जैसी चीज को कैसे संभाल पाते हैं। वही भाषा जो इतनी अस्पष्ट होती है, एक शब्द के कई मतलब होते हैं, है ना?
हाँ, ये तो है।
और जो संस्कृति और संदर्भ से इतनी भरी होती है।
हाँ, ये तो है।
और ये किताब सिर्फ इंजीनियरों या भाषा के जानकारों के लिए ही नहीं,
नहीं बिल्कुल नहीं,
ये छात्रों के लिए है, डेवलपर्स के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, और सच कहूं तो हर उस व्यक्ति के लिए है जो ये जानना चाहता है कि भाई स्क्रीन के पीछे ये होता कैसे है, जब हम कुछ टाइप करते हैं और फटाक से अनुवाद आ जाता है तो वो क्या है। ये कोई टेक्निकल गाइड नहीं है, बल्कि एक कहानी है आइडियाज की, सफलताओं की, और हाँ, मुश्किलों की भी।
अच्छा, तो इस कहानी का या कहें इस किताब का मुख्य तर्क क्या है, पोएप्यूट का सेंट्रल आर्गुमेंट क्या है?
देखिए, उनका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि मशीन ट्रांसलेशन सिर्फ शब्दों को एक भाषा से दूसरी में बदलना भर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये असल में अर्थ को, संदर्भ को, और यहाँ तक कि जो सांस्कृतिक बारीकियां होती हैं ना,
हाँ,
उनको किसी तरह गणितीय मॉडल में ढालने की कोशिश है, और फिर उसे एक भाषा की सीमा से पार करके दूसरी भाषा में पहुंचाने की एक बड़ी खोज है।
वाह, ये तो काफी गहरा विचार है।
और किताब हमें इसी कोशिश की एक यात्रा पर ले जाती है, बहुत दिलचस्प यात्रा है। पहला पड़ाव है शुरुआती दौर, जब इंसानों ने कोशिश की कि कंप्यूटर को भाषा के नियम रटा दिए जाएं, जैसे हम स्कूल में सीखते हैं ना, व्याकरण के नियम।
हाँ हाँ, बिल्कुल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वैसे।
बिल्कुल। फिर आता है दूसरा पड़ाव, स्टैटिस्टिकल तरीके, जहां कंप्यूटर ने नियम रटना छोड़ दिया और लाखों अनुवादों के उदाहरण देखकर खुद ही पैटर्न खोजना शुरू कर दिया।
अच्छा, मतलब डेटा से सीखना।
हाँ, डेटा से सीखना। और तीसरा जो आज का दौर है न्यूरल नेटवर्क का, जहां मशीनें इतने विशाल डेटा से इतने जटिल पैटर्न सीख रहे हैं कि उनका अनुवाद कभी कभी हमें भी चौंका देता है।
बिल्कुल, इंसानी जैसा लगने लगता है।
हाँ।
और इस पूरी यात्रा के सबसे दिलचस्प बात क्या निकल कर आती है?
मेरे ख्याल से सबसे दिलचस्प बात यह है कि मशीन ट्रांसलेशन का इतिहास एक तरह से डेटा के साथ हमारा रिश्ता कैसे बदला है उसका आईना है। पहले हम सोचते थे कि हम कंप्यूटर को सब कुछ सिखा देंगे, एक एक नियम, पर अब हम समझ रहे हैं कि शायद सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसे खुद सीखने का माहौल दिया जाए, भाषा से ही सीखने दिया जाए।
ये तो सच में सोचने वाली बात है। ये किताब की आत्मा है जैसा आपने कहा।
हाँ बिल्कुल।
तो चलिए अब इन पड़ावों को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। पहला भाग हमें ले जाता है शुरुआत में, नियम आधारित दौर में, लगभग 1950 से 1980 का दशक।
हाँ, और इसकी शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है। शीत युद्ध का समय था, अमेरिका को जल्दी से जल्दी सोवियत संघ के वैज्ञानिक दस्तावेजों का अनुवाद चाहिए था।
अच्छा, इंटेलिजेंस की जरूरत थी।
बिल्कुल।
और यहीं से ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन का विचार तेजी से आगे बढ़ा। 1954 में एक बड़ा मशहूर प्रयोग हुआ था, जॉर्जटाउन आईबीएम एक्सपेरिमेंट। ये पहला पब्लिक डेमो था और इसने खूब उम्मीदें जगाईं। हालांकि सच तो ये है कि वो बहुत ही सीमित था, कुछ थोड़े से वाक्य, गिने चुने नियम।
लेकिन उसने एक सपना दिखाया कि हाँ, ये हो सकता है।
एकदम। उस समय सोच यही थी कि अगर हम कंप्यूटर को भाषा के सारे नियम और एक अच्छी डिक्शनरी दे दें तो अनुवाद कर लेगा। इसी को कहते हैं रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन, यानी आरबीएमटी।
और इसके भी अलग अलग तरीके थे शायद।
हाँ, कई तरीके थे। एक तो था सबसे सीधा डायरेक्ट ट्रांसलेशन, मतलब शब्द का शब्द से अनुवाद।
ओह, वो तो अक्सर बड़ा गड़बड़ होता होगा।
हाँ, नतीजे अक्सर बड़े बेतुके और मजेदार होते थे। फिर दूसरा तरीका था थोड़ा बेहतर, ट्रांसफर बेस्ड। इसमें कंप्यूटर पहले स्रोत भाषा के वाक्य का व्याकरणिक विश्लेषण करता, फिर उसे लक्ष्य भाषा के व्याकरण के हिसाब से बदलता और तब वाक्य बनाता। इसमें तो बहुत मेहनत लगती होगी, हर भाषा के जोड़े के लिए हजारों नियम लिखने पड़ते होंगे हाथ से।
बिल्कुल, बहुत ज्यादा मेहनत। और एक तीसरा सबसे महत्वाकांक्षी तरीका था इंटरलिंगुआ।
इंटरलिंगुआ, ये क्या था?
इसका सपना ये था कि कंप्यूटर किसी भी भाषा के वाक्यों को पहले एक यूनिवर्सल विचारों की भाषा में बदले, मतलब एक ऐसी सांकेतिक भाषा जो किसी इंसानी भाषा पर आधारित न हो, सिर्फ अर्थ पर केंद्रित हो।
अच्छा।
और फिर उस विचारों की भाषा से किसी भी दूसरी टारगेट भाषा में अनुवाद कर दे। सुनने में तो ये बहुत क्रांतिकारी लगता है ना?
हाँ, लगता तो है, पर क्या ये कामयाब हुआ?
पॉयलब्यू यही बताते हैं कि ये सारे तरीके चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना लगे हों, असल दुनिया की भाषा के जटिलता के सामने मतलब टिक नहीं पाए। भाषा में इतने अपवाद होते हैं, इतने मुहावरे, संदर्भ पर निर्भर करने वाले अर्थ, कि उनके लिए नियम बनाना लगभग नामुमकिन सा था।
समझ गया, हर चीज के लिए नियम नहीं बन सकता।
बिल्कुल। और फिर आया 1966 में वो झटका, ALPC रिपोर्ट।
आपने जिक्र किया था इसका।
हाँ, इसने साफ साफ कह दिया कि भाई मशीन ट्रांसलेशन बहुत धीमा है, ज्यादा सटीक भी नहीं है और इंसानी अनुवाद से कहीं ज्यादा महंगा पड़ रहा है।
तो नतीजा?
नतीजा ये हुआ कि इस फील्ड में रिसर्च की फंडिंग लगभग बंद हो गई। इसे एक तरह का AI विंटर कहा जाता है। लगा कि मशीन ट्रांसलेशन का सपना शायद सपना ही रह जाएगा।
लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी निराशा के माहौल से एक नई सोच जन्मी और यहीं से शुरू हुई पहली क्रांति, स्टेटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन, यानी SMT। ये 1990 से लेकर करीब 2010 तक का दौर था।
हाँ, नियम आधारित सिस्टम की सीमाओं को देखकर खासकर IBM के शोधकर्ताओं ने एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने सोचा कि क्या हुआ अगर हम कंप्यूटर को नियम सिखाना ही बंद कर दें।
हाँ, ये सोच ही अपने आप में बड़ी थी। आइडिया ये था कि व्याकरण रटाने के बजाय कंप्यूटर को अनुवाद के लाखों करोड़ों उदाहरण दिखाए जाए और उसे खुद ही पैटर्न खोजने दिया जाए।
और यहीं पर वो पैरेलल कॉर्पस का कॉन्सेप्ट आया होगा।
एकदम सही, पैरेलल कॉर्पस, यानी टेक्स्ट का ऐसा विशाल संग्रह है जो दो भाषाओं में मौजूद हो, जैसे कनाडा की संसद की कार्यवाही अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों में होती है, या संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज।
अच्छा, तो इन उदाहरणों से सिस्टम ने क्या सीखा?
इन लाखों उदाहरणों को देखकर SMT सिस्टम ने अनुवाद को संभावनाओं यानी प्रोबेबिलिटीज के नजरिए से देखना शुरू किया। सवाल अब ये नहीं था कि नियम क्या है, सवाल ये था कि अगर स्रोत भाषा में ये वाक्य है तो लक्ष्य भाषा में इसके कौन से अनुवाद की संभावना सबसे ज्यादा है।
ये तो बिल्कुल अलग अप्रोच है।
हाँ, इसके लिए सिस्टम कुछ खास चीजें सीखता था, जैसे अलाइनमेंट, मतलब दो भाषाओं के शब्दों और वाक्यांशों के बीच में मेल बिठाना।
अच्छा।
फिर ट्रांसलेशन मॉडल, जो ये बताता कि किसी एक भाषा के वाक्यांश का दूसरी भाषा में अनुवाद होने की कितनी संभावना है। और एक और जरूरी चीज थी लैंग्वेज मॉडल।
लैंग्वेज मॉडल वो क्या करता था?
वो ये पक्का करता था कि जो अनुवाद बन रहा है वो लक्ष्य भाषा में स्वाभाविक लगे, अटपटा न लगे, मतलब व्याकरणिक रूप से सही हो और सुनने में ठीक लगे। जैसे अंग्रेजी में द व्हाइट हाउस सही है, हाउस द व्हाइट नहीं। लैंग्वेज मॉडल ये सुनिश्चित करता था।
समझ गया। और इसमें भी शायद कोई और सुधार हुआ, आपने फ्रेज बेस्ड एसएमटी का जिक्र किया था।
हाँ, वो एक बहुत बड़ा कदम था, फ्रेज बेस्ड एसएमटी। इसने सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि शब्दों के छोटे छोटे समूहों या वाक्यांशों, फ्रेजेस का अनुवाद करना सीखा। इससे अनुवाद की क्वालिटी में जबरदस्त सुधार आया, वो ज्यादा स्वाभाविक लगने लगा।
और यही वो तकनीक थी जो उस समय के गूगल ट्रांसलेट वगैरह में इस्तेमाल होती थी।
बिल्कुल, यही वो तकनीक थी जिसने 2000 और 2010 के दशक में मशीन ट्रांसलेशन को आम लोगों तक पहुंचाया। ये सच में एक क्रांति थी। अब अनुवाद की गुणवत्ता चतुर भाषाविदों पर उतनी निर्भर नहीं थी जितनी कि डेटा की मात्रा और गुणवत्ता पर, और सांख्यिकी एल्गोरिदम की ताकत पर।
वाह, डेटा की ताकत।
हाँ, लेकिन फिर जब लगा कि हम शायद शिखर पर पहुंच गए हैं, तभी आई दूसरी क्रांति,
न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन।
हाँ बिल्कुल, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन। ये 2010 के मध्य से शुरू हुई और आज भी यही सबसे आगे है, और ये एक और शायद पहले से भी ज्यादा बड़ा बुनियादी बदलाव था। इसने सांख्यिकीय तरीकों को भी पीछे छोड़ दिया।
और इसका आधार है डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क, है ना?
एकदम वही तकनीक जो आजकल आप हर जगह सुन रहे हैं, इमेज पहचानने में, आवाज पहचानने में, यहाँ तक कि सेल्फ ड्राइविंग कारों में भी। इसका जो मुख्य ढांचा है उसे कहते हैं एनकोडर डिकोडर मॉडल।
एनकोडर डिकोडर, ये कैसे काम करता है?
इसे आप ऐसे समझें, एनकोडर नाम का एक न्यूरल नेटवर्क पहले पूरे स्रोत वाक्य को पढ़ता है और उसके पूरे अर्थ को, उसके सार को पकड़कर उसे संख्याओं के एक सेट में बदल देता है, गणितीय रूप में। इसे कॉन्टेक्स्ट वेक्टर या मजाक में थॉट वेक्टर भी कहते हैं, जैसे वाक्य के विचार का गणितीय रूप।
अच्छा, थॉट वेक्टर, दिलचस्प नाम है।
हाँ, फिर दूसरा हिस्सा डिकोडर इस गणितीय सार यानी वेक्टर को लेता है और उससे लक्ष्य भाषा में एक एक करके शब्द बनाना शुरू करता है, जिससे पूरा अनुवादित वाक्य तैयार हो जाता है।
और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ एसएमटी के मुकाबले?
सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पूरे स्रोत वाक्य को एक साथ ध्यान में रखकर अनुवाद करता है, ना कि सिर्फ टुकड़ों में। इससे वाक्य का प्रवाह, मतलब फ्लुएंसी, और खास तौर पर लंबे या जटिल वाक्यों को संभालने की क्षमता, वो अविश्वसनीय रूप से बेहतर हो गई।
और इसमें वो अटेंशन मैकेनिज्म का भी बड़ा रोल था, है ना?
अरे हाँ, वो तो कमाल की चीज थी, अटेंशन मैकेनिज्म। इसने डिकोडर को ये काबिलियत दी कि जब वो लक्ष्य भाषा का कोई शब्द बना रहा हो तो वो स्रोत वाक्य के उन हिस्सों पर ज्यादा ध्यान या फोकस कर सके जो उस खास शब्द के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं।
अच्छा।
इससे लंबे वाक्यों का अनुवाद, जो एसएमटी के लिए अक्सर मुश्किल होता था, वो अचानक बहुत सुधर गया।
तो एनएमटी सिस्टम एक तरह से खुद ही सब सीख लेते हैं।
हाँ, इनकी एक और खासियत है कि ये एंड टू एंड सीखते हैं, मतलब आप उन्हें बस लाखों वाक्य जोड़े दे दीजिए, स्रोत भाषा का वाक्य और उसका सही अनुवाद, और सिस्टम खुद ही सीख लेगा कि ये अनुवाद कैसे करना है। बीच के सारे कदम वो खुद ही तय कर लेता है।
वाह, यही वजह है कि आजकल गूगल, डीपल, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर वगैरह के अनुवाद इतने अच्छे लगते हैं।
बिल्कुल, 2016 में जब गूगल ने अपने पूरे सिस्टम को एनएमटी पे शिफ्ट किया, वो इस फील्ड के लिए एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ था।
तो ये तो हुई टेक्नोलॉजी की यात्रा, नियम आधारित से सांख्यिकी और फिर न्यूरल तक। लेकिन किताब के आखिरी हिस्से में मूल्यांकन, चुनौतियों और भविष्य की बात भी है, है ना? जैसे ये अनुवाद कितने अच्छे हैं ये कैसे पता करें?
हाँ, ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल है। इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड तरीका है BLU स्कोर। ये क्या करता है कि मशीन के अनुवाद की तुलना इंसानों द्वारा किए गए एक या ज्यादा अच्छे अनुवादों से करता है और देखता है कि कितने शब्द और वाक्यांश मेल खाते हैं।
तो स्कोर जितना ज्यादा उतना अच्छा अनुवाद?
मोटे तौर पर हाँ। पोव्यो भी मानते हैं कि ये उपयोगी है, पर वो ये भी कहते हैं कि ये परफेक्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि अक्सर ऊपरी समानता को पकड़ता है. हो सकता है मशीन का अनुवाद मतलब तो सही बता रहा हो, पर शब्द अलग इस्तेमाल किए हों तो ब्लू स्कोर कम हो जाएगा, या हो सकता है शब्द तो मेल खा रहे हों पर बारीकियां छूट गई हों.
हाँ, मतलब को पकड़ना ज्यादा जरूरी है शब्दों के मिलान से.
बिल्कुल. और चुनौतियां भी अभी बहुत हैं.
जैसे
एक बड़ी चुनौती है कम संसाधन वाली भाषाएं,
जी,
लो रिसोर्स लैंग्वेजेस. NMT को सीखने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए होता है. अब जिन भाषाओं के लिए ऑनलाइन ज्यादा टेक्स्ट या अनुवादित डेटा नहीं है, उनके लिए मशीन ट्रांसलेशन की क्वालिटी आज भी उतनी अच्छी नहीं है.
हम भारत में ही सोचें तो कितनी सारी भाषाएं और बोलियां हैं
जी,
जिनके लिए शायद पर्याप्त डिजिटल डेटा ही ना हो.
सही कहा. दूसरी चुनौती है डोमेन स्पेसिफिसिटी, मतलब विषय विशेषज्ञता. अगर किसी सिस्टम को खबरों का अनुवाद करने के लिए ट्रेन किया गया है, तो वो शायद मेडिकल रिपोर्ट या कविताओं का अच्छा अनुवाद ना कर पाए. हर फील्ड की अपनी अलग भाषा होती है.
हाँ, ये तो है. और एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है पोएब्यू ने, पूर्वाग्रह का, बायस का.
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है. ये सिस्टम सीखते कहाँ से हैं? इंसानों के लिखे टेक्स्ट से. और अगर हमारे लिखे हुए टेक्स्ट में ही समाज के पूर्वाग्रह भरे पड़े हैं, लिंग को लेकर, नस्ल को लेकर, संस्कृति को लेकर, तो मशीनें भी उन्हें सीख लेती हैं.
और कभी कभी तो शायद बड़ा चढ़ाकर भी दिखाती हैं.
हाँ, ऐसा भी हो सकता है. ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि टेक्नोलॉजी किस तरह समाज का आईना बन जाती है, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों का.
ये तो वाकई गंभीर बात है. और कोई बड़ी चुनौती?
हाँ, एक और है, संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट और दुनिया की सामान्य समझ, जिसे कॉमन सेंस कहते हैं. कई बार वाक्य का सही मतलब समझने के लिए आपको पिछली बातचीत का पता होना चाहिए या दुनिया के बारे में कुछ सामान्य जानकारी होनी चाहिए. ये चीजें अभी भी मशीनों के लिए एक बड़ी पहेली है.
तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए भविष्य क्या लगता है? क्या मशीनें इंसानी अनुवादकों की नौकरी खा जाएंगे?
ओएबीयू का मानना है, और मैं भी सहमत हूँ, कि शायद ऐसा न हो. मतलब पूरी तरह से रिप्लेसमेंट शायद न हो, बल्कि ये तकनीक अनुवादकों के काम करने का तरीका बदल रही है. बहुत से प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स अब MT का इस्तेमाल एक पहले ड्राफ्ट की तरह करते हैं.
अच्छा, उसे क्या कहते हैं?
इसे कहते हैं पोस्ट एडिटिंग. मतलब मशीन ने जो अनुवाद किया, उसे इंसान फिर सुधारे, संवारे, उसमें बारीकियां जोड़े, सांस्कृतिक रूप से सही करे.
तो इंसान का रोल बदल रहा है?
हाँ, इंसान का रोल ज्यादा विशेषज्ञता वाला हो रहा है. खासकर जो रचनात्मक काम है या बहुत संवेदनशील सामग्री है, वहाँ इंसानी समझ और परख अभी भी बहुत जरूरी है.
तो इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें या संदेश जो निकल कर आते हैं वो क्या हैं?
हाँ, कई अहम बातें हैं. पहला और शायद सबसे बड़ा सबक है डेटा की नियमों पर जीत. ये किताब बार बार यही दिखाती है कि मशीन ट्रांसलेशन में असली सफलता तब मिली जब हमने कंप्यूटर को भाषा के नियम रटाना छोड़कर उसे भाषा के विशाल डेटा से खुद सीखने दिया.
हाँ, उदाहरणों से सीखना नियमों को रटने से ज्यादा कारगर साबित हुआ, खासकर भाषा जैसी जटिल चीज के लिए.
बिल्कुल.
दूसरा पॉइंट है कि MT का सफर AI के विकास का प्रतिबिंब है. जैसे जैसे AI की समझ बदली, नियम आधारित से स्टैटिस्टिकल और फिर डीप लर्निंग तक, वैसे वैसे MT भी बदलता गया.
ये दिखाता है कि ये AI की एक कोर समस्या रही है.
हाँ, तीसरा, और ये समझना बहुत जरूरी है, MT असल में समझता नहीं है, ये पैटर्न पहचानता है. पोएब्यू ये साफ करते हैं कि सबसे आधुनिक NMT सिस्टम भी इंसानों की तरह भाषा को समझते नहीं हैं. वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली पैटर्न खोजने वाली मशीनें हैं. हाँ, वो शब्दों और वाक्यों को गणितीय स्पेस में देखते हैं और उनमें रिश्ते ढूंढते हैं. ये जानना इस तकनीक के रहस्य को थोड़ा कम करता है.
बिल्कुल. चौथा पॉइंट है कंप्यूटिंग पावर का महत्व. ये सांख्यिकीय और न्यूरल क्रांतियां तभी संभव हुई जब हमारे पास इतने शक्तिशाली कंप्यूटर और इतना डेटा आ गया कि हम इन जटिल मॉडलों को ट्रेन कर सकें.
ये हार्डवेयर और डेटा की कहानी भी उतनी ही है जितनी एल्गोरिदम की.
सही कहा. और पांचवा, इंसान और मशीन का बदलता रिश्ता. ये इंसान बना मशीन नहीं, बल्कि इंसान और मशीन साथ साथ की कहानी बन रही है.
हाँ, तकनीक शायद दोहराव वाले काम को ऑटोमेट कर रही है, जिससे इंसान ज्यादा रचनात्मक और विशेषज्ञता वाले कामों पर फोकस कर पा रहे हैं. भविष्य सहयोग का है.
एकदम. और इसी से जुड़ा है छठा पॉइंट, तकनीक समाज का आईना है. जैसा हमने पूर्वाग्रह वाले बिंदु पर देखा, मशीनें वही सीखती हैं जो डेटा उन्हें सिखाता है. अगर हमारी भाषा और समाज में भेदभाव है तो वो तकनीक में भी दिखेगा। ये हमें अपनी भाषा और समाज पर भी सोचने को मजबूर करता है।
किताब में कुछ विचार या कोट्स भी होंगे जो खास तौर पर याद रह जाते हैं।
हाँ, सीधे कोट्स तो नहीं, पर कुछ ऐसे विचार हैं जो पूरी किताब का सार बयान करते हैं। जैसे पहला, अनुवाद सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, ये अर्थ और संस्कृति को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाना है। ये MET की असली चुनौती को उजागर करता है, संदर्भ और संस्कृति।
बिल्कुल। दूसरा विचार जो क्रांति का सार है, MET में क्रांति तब आई जब हमने कंप्यूटर को नियम रटाना बंद किया और उसे लाखों उदाहरणों से पैटर्न सीखने दिया। ये डेटा ड्रिवन अप्रोच की ताकत है।
तीसरा, NMT को समझने का वो तरीका। न्यूरल MET वाक्यों को समझता नहीं, बल्कि उन्हें गणितीय नक्शे पर बिंदुओं की तरह देखता है और सीखता है कि एक भाषा के बिंदु से दूसरी भाषा के सही बिंदु तक कैसे जाना है।
हाँ, ये उसके काम करने के तरीके को सरल बनाता है।
और चौथा, जो भविष्य की ओर इशारा करता है। सवाल ये नहीं कि मशीनें इंसानों की जगह लेंगी, बल्कि ये कि वो पेशे को कैसे बदलेंगी। भविष्य सहयोग का है।
ये सारे विचार काफी सोचने पर मजबूर करते हैं। अब सवाल ये है कि इस सारी जानकारी का हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? MT का इस्तेमाल करते वक्त क्या ध्यान रखें?
हाँ, ये प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, अगर आप एक आम उपयोगकर्ता हैं, मान लीजिए कहीं घूमने गए हैं, मेन्यू पढ़ना है, रास्ता पूछना है, तो MT ऐप्स बहुत काम के हैं। वो आपको फटाफट मतलब समझा देंगे, लेकिन ये उम्मीद न रखें कि वो आपकी बात को पूरी तहजीब से या स्थानीय लहजे में कहेंगे। काम चलाने के लिए अच्छे हैं।
और बिजनेस में इस्तेमाल करने वालों के लिए?
अगर आप बिजनेस में हैं, तो अपनी वेबसाइट या मार्केटिंग सामग्री का अनुवाद सिर्फ फ्री ऑनलाइन टूल से करवाना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है।
हाँ, मतलब का अनर्थ हो सकता है।
बिल्कुल, अंदरूनी बातचीत के लिए शायद ठीक हो, पर जब आपकी कंपनी की इमेज दाव पर है, तो प्रोफेशनल इंसानी अनुवादक या कम से कम पोस्ट एडिटिंग जरूर करवानी चाहिए।
और स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स के लिए?
चलिए, तो ये ज्ञान का दरवाजा खोलने जैसा है। आप दूसरी भाषाओं की रिसर्च पढ़ सकते हैं, पर हाँ, MT से मिले अनुवाद को सीधे कोट करना ठीक नहीं। अर्थ में बारीक गलतियां हो सकती हैं, इसलिए ओरिजिनल सोर्स से क्रॉस चेक करना हमेशा अच्छा लेता है।
और जो लोग भाषा सीख रहे हैं,
उनके लिए ये एक तरह की सुपर डिक्शनरी है। देख सकते हैं कि शब्दों का इस्तेमाल असल में कैसे होता है, लेकिन ये व्याकरण क्यों और कैसे काम करता है ये नहीं सिखाएगा। उसके लिए तो मेहनत करनी होगी।
सही कहा। और आखिर में, एक नागरिक के तौर पर,
एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमें ये समझना चाहिए कि MT संस्कृतियों के बीच एक पुल तो बना रहा है, पर ये पुल अभी पूरी तरह मजबूत नहीं है। ये संचार आसान करता है, पर कभी कभी भाषा की आत्मा उसकी विविधता को कम कर सकता है। और हाँ, इसके जरिए फैलने वाले पूर्वाग्रहों से सावधान रहना होगा।
तो इस पूरी ज्ञान गोष्ठी के अंत में आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे, सबसे यादगार बात क्या रही?
मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये समझना था कि ये तकनीक जो हमें जादू सी लगती है, वो असल में कितनी सारी चीजों का मिश्रण है। गणित, ढेर सारा डेटा, उस जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर, और ये देखना कि कैसे सोच बदली, नियम सिखाने से हटकर डेटा से सीखने तक। ये AI के बारे में भी बहुत कुछ कहता है कि कई बार जवाब सीधे नियमों में नहीं, पैटर्न में होता है।
और मेरे लिए सबसे स्थायी अंतर्दृष्टि ये है कि इतनी प्रभावशाली क्षमताओं के बावजूद मशीनी अनुवाद अभी भी इंसानी समझ और बारीकियों से काफी दूर है। सबसे कारगर इस्तेमाल शायद वही है जहां मशीन की रफ्तार और इंसान की समझ दोनों का तालमेल हो। ये तकनीक इंसानी क्षमताओं को खत्म नहीं कर रही, बल्कि उन्हें नए तरीके से इस्तेमाल करने के मौके दे रही है।
बिल्कुल, और उम्मीद है कि इससे हम एक दूसरे की संस्कृतियों और भाषाओं को बेहतर समझ पाएंगे।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।